अयान ने अरहान की मौत के पीछे की हर सच्चाई पता कर ली थी। अयान ने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की थी। वो जानता था कि इस खेल में एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है, इसलिए उसने हर चीज का पता धीरे धीरे और बहुत सोच समझ कर लगाया। वो कई दिनों से चुप था। बाहर से ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन हकीकत ये थी कि वो हर दिन हर पल सबूत इकट्ठा कर रहा था। अनाथाश्रम, पटाखों की फैक्ट्री, मिस्टर सहगल के लोग और उन विदेशी शेखों के बीच क्या संबंध था, अयान एक एक कड़ी जोड़ रहा था। वो जानता था कि अगर उसने जरा भी जल्दबाजी की तो ना सिर्फ उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी, बल्कि अरहान का अधूरा मिशन भी हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। इसलिए उसने खुद को शांत रखा और सही समय का इंतजार करता रहा। लेकिन जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब सच सामने लाने का वक्त आ गया है, तब अयान ने एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दिया। असल में उस अनाथ आश्रम के ट्रस्ट का ट्रस्टी मिस्टर सहगल था। बाहर से वो समाज सेवी बनने का ढोंग करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका असली चेहरा बहुत खतरनाक था। मिस्टर सहगल की एक पटाखों की फैक्ट्री थी। वो नहीं चाहता था कि अनाथ आश्रम के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, इसलिए वो उन्हें पढ़ाई से दूर रखकर अपनी फैक्ट्री में काम करवाता था। इससे उसे मजदूरों का खर्च भी नहीं देना पड़ता था। अरहान, जो कभी उसी अनाथ आश्रम में पला बढ़ा था, अब बड़ा होकर प्रोफेसर बन चुका था। जब वो अचानक वापस आया तो उसे इस पूरे काले खेल का पता चल गया। मिस्टर सहगल को डर था कि अगर अरहान जिंदा रहा तो उसका सारा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। इसी डर में उसने अरहान को मरवा दिया। लेकिन मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता था। कुछ विदेशी शेख भी इस गंदे खेल में शामिल थे। वे अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खतरनाक और अमानवीय खेलों का हिस्सा बनाने के लिए खरीदना चाहते थे। अरहान भले ही अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका मिशन अधूरा नहीं रहने वाला था। अयान ने फैसला कर लिया था कि वो अरहान का अधूरा काम पूरा करेगा। जब मिस्टर सहगल को लगने लगा था कि सब कुछ फिर से सामान्य हो रहा था, तभी एक दिन अचानक उसकी पटाखों की फैक्ट्री को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के साथ वहां अयान भी मौजूद था। अयान कोई साधारण आदमी नहीं था। एक ही झटके में उसने मिस्टर सहगल के पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। मिस्टर सहगल गिरफ्तार हो चुका था। अनाथ आश्रम के बच्चों को उस नरक से आज़ादी मिल गई थी। और अब अयान ने तय कर लिया था कि आगे से उस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी वो खुद संभालेगा, ताकि कोई और बच्चा फिर कभी इस तरह के अत्याचार का शिकार ना बने। अयान की फैमिली को पहले इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया और सच सामने आया, तब सबको असली बात मालूम हुई। सब हैरान थे। उन्होंने अयान का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखा था। वैसे भी जब से अयान का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके कई नए रंग सामने आने लगे थे। अब वो सिर्फ एक सख्त और चुप रहने वाला इंसान नहीं रहा था। वो एक प्यार करने वाला बेटा था, एक जिम्मेदार पति था, और अपने भतीजे भतीजियों से बेहद प्यार करने वाला चाचा भी। सारा काम खत्म होने के बाद सभी लोग घर के हॉल में इकट्ठा होकर बैठे थे। तुम्हें हमें बताना चाहिए था, उसके बड़े भाई आरिफ ने गंभीर आवाज में कहा। तुम्हारी जान को खतरा था और तुम इतनी बड़ी मुसीबत में थे, हमें बताया क्यों नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हो, उसके दादा ने भी हामी भरी। अयान कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप लोग नहीं समझेंगे, मेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है, शायद मैं उसी के जैसा हो गया हूं। मेरा दिल ही नहीं किया कि आपको इस सब में डालकर परेशान करूं। तभी सबके बीच बैठी सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक बात बताइए चाचा जान, क्या जिस इंसान का दिल आपको लगा है वो भी किसी से इतना ही प्यार करता था? सवाल सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अयान ने बिना झिझक कहा, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जोया के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। उसका यूं सबके सामने अपने प्यार का इजहार करना सुनकर सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। श्याम भाई ने हंसते हुए कहा, बस ऐसे ही रहना चाहिए, हमें तुम दोनों के लिए बहुत खुशी है। फिर अयान ने सारा की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे तुम कब जा रही हो? सारा ने जवाब दिया, बस इमरान अपनी बिजनेस ट्रिप से लौट आए, फिर मैं चली जाऊंगी, आज ही उससे बात हुई है। उसकी माँ ने थोड़ा छेड़ते हुए कहा, तो तुम उसके साथ ही चली जाती, यहाँ क्यों रुक गई? असल में थोड़ी देर पहले ही सारा के इमरान से फोन पर हल्की सी लड़ाई हुई थी। वो नाराज थी कि इमरान को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा था, उसके बिना सारा का मन ही नहीं लगता था। सच कहें तो अब लगभग सबकी जिंदगी में खुशहाली लौट आई थी। मानवी और वेद अपनी दुनिया में खुश थे, सानवी और आर्यन भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे और मिलकर जय की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। अयान और जोया साथ थे, सारा और इमरान भी एक दूसरे के साथ खुश थे। अब अगर कोई अधूरी लव स्टोरी बची थी तो वो सिर्फ ज्ञान और न्यारा की थी। दोनों की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन उनके दिलों की बातें अभी तक खुलकर सामने नहीं आई थी। और फिर बची थी नूर। नूर अब ऐसे लोगों के बीच थी जिनके चेहरों पर नकाब थे। दुनिया उसके लिए अभी भी उतनी सुरक्षित नहीं थी, लेकिन एक ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में आ चुका था जो सचमुच उसे चाहता था और उसे इस दुनिया की हर बुराई से बचा सकता था। वो इंसान उसकी जिंदगी में तो आ चुका था, बस अभी तक उसके दिल तक पूरी तरह नहीं पहुंचा था। लेकिन शायद वो दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं था। ज्ञान बाहर गया हुआ था। जाने से पहले उसने न्यारा से कहा था कि अगर चाहे तो ऑफिस चली जाए, वहीं से अपना काम संभाल सकती है। लेकिन न्यारा ऑफिस जाती उससे पहले ही सुनीता ने उसे रोक लिया। आज कहीं नहीं जाना, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। आज तुम मेरे साथ चल रही हो शॉपिंग पर। इन दो दिनों में सुनीता और न्यारा के बीच रिश्ता काफी अच्छा हो गया था। सुनीता अपनी बहू को लेकर इतनी खुश थी कि उसने न्यारा के लिए ढेर सारी शॉपिंग करवाई। न्यारा बार बार मना करती, मॉम जी बस कीजिए, इतना सब मत लीजिए। लेकिन सुनीता उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। शॉपिंग करते करते सुनीता अपने सपनों के बारे में भी बातें करने लगी। मुझे तो अब बस अपने पोते पोती चाहिए, उसने हंसते हुए कहा। मेरी सारी सहेलियों के घर बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं, बस एक मैं ही रह गई हूँ। ये सुनकर न्यारा थोड़े चौंक गई। मॉम जी आप क्या कह रही हैं, अभी तो हमारी शादी ही हुई है, उसने हल्की झिझक के साथ कहा। अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, सुनीता ने हंसते हुए कहा। बच्चे तो होने ही चाहिए, घर में रौनक आ जाती है। उसी समय ज्ञान के पापा भी, जो शॉपिंग के दौरान उनके साथ थे, मुस्कुराते हुए बोले। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी मॉम, अब मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ। ज्ञान ने अभी तक बिजनेस ठीक से संभाला नहीं है। अगर जल्दी बच्चे हो जाएं, तो शायद मेरे जीते जी अगली पीढ़ी भी बिजनेस संभाल ले। ये सब सुनकर न्यारा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कैसे बताए कि उसके और ज्ञान के बीच तो अभी तक कुछ भी नहीं है। वे तो जैसे दो अजनबियों की तरह एक ही छत के नीचे रह रहे थे। बाहर से वो बस हल्की सी मुस्कान दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग फटने वाला था। मन ही मन वो ज्ञान को कोस रही थी। खुद तो आराम से विदेश घूमने चला गया और मुझे यहां सबके बीच फंसाकर चला गया। अब मैं इन सबको क्या जवाब दूं? न्यारा की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई बिना गलती के ही मुसीबत में फंस गया हो।
ये कहना कि अजनबियों की तरह छत के नीचे, ये शब्द भी गलत है, क्योंकि वो लोग तो शादी के बाद साथ ही नहीं हुए थे। ज्ञान अपने काम में बिजी था और वो उसके घर में उसके माँ बाप को एंटरटेन कर रही थी। मगर जब तक ज्ञान नहीं आ जाता, उसने चुपचाप ऑफिस से छुट्टी लिया और यहीं रहने का फैसला किया था।